नमस्कार भारत, तारीख 1 अगस्त, दिन शनिवार। मैं हूं विनीत खरे। मध्य रात्रि में हुई भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली। भारत को मिले 14,000 नए नागरिक। आगे की चुनौतियों पर एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था,
यहाँ जो बांग्लादेशी सिटीजन था अभी वो लोग इंडियन सिटीजन हो गए हैं। अभी उनका कोई एड्रेस भी नहीं है, कोई पिन कोड भी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने के बाद बलात्कार की शिकार 14 वर्षीय किशोरी के गर्भपात की प्रक्रिया शुरू। साथ में खेल और खिलाड़ी और नई रिलीज हुई फिल्म दृश्यम का रिव्यू भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। मध्यरात्रि 12 बजते ही भारत और बांग्लादेश के बीच सीमांत गांव की अदला बदली प्रभाव में आ गई है और बीते लगभग 7 दशकों से राष्ट्रविहीनता का दंश झेल रहे हजारों लोगों को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीयता मिल गई। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच इसी साल जून में ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसके बाद यह अदला बदली प्रभाव में आई है। दोनों देशों के अधिकारियों ने अपने देश में शामिल हुए इलाकों में राष्ट्रीय ध्वज फहराए। इन इलाकों में रह रहे लगभग 50,000 लोगों को अब नागरिकता और स्कूल शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि पश्चिमी तट पर आगजनी के हमले में 1.5 साल के फलस्तीनी बच्चे की जान लेने वाले हमलावरों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। माना जा रहा है कि यह हमला पश्चिमी तट में बसे यहूदियों ने किया है। अमेरिका ने भी हमले की आलोचना की है। वहीं फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि जब तक फलस्तीनियों की जमीन पर बसाए गए अवैध यहूदी रहेंगे, ऐसे हमले होते रहेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू भी पश्चिमी तट पर आगजनी के हमले में मारे गए बच्चों के बुरी तरह झुलस चुके भाई से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि इजरायल हमलावरों को हर हाल में गिरफ्तार करेगा। उन्होंने कहा, हम इस बच्चे की जान बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके दोनों परिजन भी इजराइल के ही दूसरे अस्पतालों में हैं और उन्हें बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बच्चे के मासूम भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हम स्तब्ध और गुस्से में हैं और इसकी आलोचना करते हैं। हम चरमपंथ बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो जहाँ से भी हो। ये थे इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। अफगान तालिबान के नेता मुल्ला उमर की मौत की पुष्टि के एक दिन बाद एक और वरिष्ठ इस्लामी नेता के कुछ महीने पहले मारे जाने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। जलालुद्दीन हक्कानी शक्तिशाली हक्कानी नेटवर्क के नेता थे और तालिबान और अलकायदा के करीबी सहयोगी। पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने कई विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से लिखा है कि हक्कानी की मौत पिछले साल बीमारी के कारण हो गई है। हालांकि हक्कानी परिवार के करीब भी इससे इनकार कर रहे हैं। हक्कानी के बेटे को हाल ही में तालिबान का उपनेता चुना गया है। अफगान सोवियत युद्ध के दौरान हक्कानी को अमेरिका का समर्थन और सहयोग प्राप्त था। खतरनाक इबोला वायरस की रोकथाम के लिए बेहद कम समय में विकसित किया गया टीका परीक्षणों में 100% कामयाब पाया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। रात को घड़ी में जैसे ही 12 बजे भारत और बांग्लादेश के बीच 162 एनक्लेव की अदला बदली का काम पूरा हो गया। करीब 50,000 लोग जो पिछले करीब 68 सालों से बिना किसी परिचय के जीवन व्यतीत कर रहे थे, आखिरकार वो एक देश के नागरिक बन गए। जमीन की इस लेन देन से भारत को 55 बांग्लादेशी एनक्लेव मिले और 14,000 नए भारतीय। इन लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए तिरंगा फहराया और खूब जश्न मनाया। मुख्य कार्यक्रम मोशालडांगा एनक्लेव में आयोजित किया गया, जहां बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टासाली मौजूद थे। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
12 अभी तक बजी नहीं पर पटाखे फोड़ना शुरू हो गया और राष्ट्रध्वज फैलाने के लिए मौसलडांगा छिटमहल के लोग पूरी तरह से तैयार है। घड़ी में समय है रात 12, तिरंगा झंडा फैला जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक घटना घटी जा रही है हमारे आंखों के सामने। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का निधन के कारण राष्ट्रीय ध्वज आधा ही फैलाया गया। यहाँ के लोग कोई भारत माता की जय और वंदे मातरम नारे लगा रहे हैं। यही है वो ऐतिहासिक घड़ी, छिटमहल के निवासियों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने का वो वक्त जिसके लिए वे पिछले 68 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। शाम को जब मैं मौसलडांगा गांव पहुंचा था तब ये जगह बांग्लादेश का था। अभी भी मैं उसी गांव में हूं, पर गांव अभी भारत का हो गया। छिटमहल के कई निवासी बोल रहे थे,
छिटमहल जीवन एकदम शेष, पूरी
इनका कहना था छिटमहल का जिंदगी खत्म हुआ, कल से नई सूरज का रोशनी आएगी उनके जिंदगी में। ये बोल रहे थे कि रात 12 बजे जिंदगी की एक नई पन्ना शुरू हुआ उनके लिए, चारों तरफ खुशहाली दिख रहा है। इस युवा का कहना है भारत में आने के बाद ही दुख भरी जिंदगी समाप्त हुआ, आज से छिटमहल के लोगों को स्वतंत्रता मिल गया। भारत के दूसरे नागरिकों के तरह छिटमहल निवासी भी सर उठा के जी सकेंगे। अब तिरंगा फैलाने और पटाखे जलाने के बाद मौसलडांगा के ज़्यादातर निवासी अपने घर चले गए थे 68 मोमबत्ती जलाने के लिए। पिछले 68 सालों का उनके दुख भरी जिंदगी को वो ऐसे ही याद किया आज इस खुशी के दिन में भी। शाम को जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें भी छिटमहल के निवासी सुना रहे थे अपनी बीते जिंदगी की कहानियाँ। एक महिला उसी जिंदगी पर आधारित एक गीत की रचना की है। शनिवार सुबह छिटमहलों में भारत सरकार की तरफ से राष्ट्र ध्वज फैलाया जाएगा, उसके बाद शुरू हो जाएगा पूर्व छिटमहलों के निवासियों को नई पहचान पत्र देने का प्रक्रिया, जिसके लिए ये इतने सालों से इंतजार कर रहे थे।
ये रिपोर्ट थी अमिताभ भट्टासाली की। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने कूच बिहार के DMP उलगनाथन से पूछा कि इन इनक्लेव्स की अदला बदली के दौरान लोगों में कितना उत्साह था।
लोग काफी खुश है क्योंकि ये इतना सालों के बाद इन लोगों को एक सिटीजनशिप स्टेटस मिलेगा और वो लोग जैसे दूसरा सिटीजन जैसे उनको फैसिलिटी मिलता है या जहाँ भी जा सकते हैं, एक फ्रीडम जो मिलता है वो सब इनको मिलेगा, इसलिए लोग काफ़ी मैंने जश्न मना रहे हैं। सब जगह में नेशनल फ्लैग ये सब ये करके लोग को भी मैंने आनंद दिख रहा है।
जी आनंद दिख रहा है, ये पूरा प्रोसेस बहुत ही शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन किस तरह के एहतियाती कदम उठाए गए थे?
दोनों देश के बीच में बहुत बार मैंने मीटिंग हुई थी, वहाँ बहुत सारी चीज आलोचना करके हम लोग अच्छे से अरेंजमेंट करके ये प्रोग्राम हमने चलाया। अभी तक काफी शांतिपूर्ण मैंने स्टेप्स लेके अच्छे से हुआ है। हम आशा भी करेंगे जब इंटीग्रेशन हो जाएगा इसके बाद भी हर चीज अच्छे से होगा और कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जी ये देखा जा रहा है कि भारत आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और बांग्लादेश जाने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर है, ऐसा क्यों?
भारत में बहुत सारे लोग आ रहे हैं इसलिए उन लोगों को लगता है भारत में उनको अच्छा मैंने सुविधा मिलेगा और बहुत कुछ आगे उनको फायदा होगी करके बहुत सारे लोग आ रहे हैं। यहाँ से जो लोग वहाँ नहीं जा रहे इन लोगों को एक अच्छा खासा सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, उनको कुछ अच्छा फैसिलिटी मिलने के चांस है, इसलिए लोग सोचते हैं वहाँ जाने से उनको मिलेगा नहीं इसलिए यहीं रह जा रहे हैं। तो ये सब लाइवलीहुड के ऊपर है, कौन कितना अच्छा से सिस्टम के अंदर जाके फायदा ले सकें, इसी तौर पर ये मैंने डिसीजन ले रहे लोग। लोग वही है, इतना सालों के बाद हो रहा है, उन लोगों को बहुत कुछ मैंने सोच है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसे होगा क्या होगा, इसी को लेकर एक अप्रिहेंशन है। अदरवाइज लोग खूब मैंने खुशी है दैट इतना सालों के बाद उनको ऐसा कुछ मौका दिया जा रहा है। सो लोग काफ़ी खुश हैं और बहुत कुछ उनको एक्सपेक्टेशंस है, अप्रिहेंशंस है, वो सब जब आएंगे तब उन लोगों को एक एक करके हम लोग जब सुविधा देंगे, जब उन लोगों को इंटीग्रेशन करेंगे, उन लोगों का फायदा मिलेगा, तब उन लोगों को एक अच्छा सिस्टम आने के बाद और काफ़ी अच्छा लगेगा।
जी जो लोग भारत अब आ रहे हैं उनके लिए किस तरह की योजना बना रही है सरकार, किस तरह की सुविधा देगी?
जो लोग भारत में आ रहे हैं उन लोगों के लिए हम इनिशियली कुछ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कराएंगे, उसके बाद उन लोगों को जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उस स्कीम में उन लोगों का नाम में हम बहुत सारे सुविधा देंगे। इसके अलावा और वो परमानेंटली कहीं सेटल होना चाहें या और कहीं माइग्रेट होना चाहें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से हम बहुत कुछ उन लोगों को हेल्प करेंगे। यहाँ जो बांग्लादेशी सिटीजन था, अभी वो लोग इंडियन सिटीजन हो गए हैं, उनके लिए सब कुछ हम लोग को शुरू से करना पड़ेगा। मैंने अभी उनका कोई एड्रेस भी नहीं है, कोई पिन कोड भी नहीं है, तो हम लोग को पिन कोड से लेके उनका लैंड का डेफिनेशन देने से लेके कौन सा ग्राम पंचायत, कौन सा ब्लॉक, कौन सा यू नो डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ये एड्रेस देने से शुरू करके, उनके सिटीजनशिप देने से शुरू करके, हर काम हम लोग को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। सो ये काम इतना इंटरेस्टिंग है, सब कुछ हम लोग को मैंने शुरू से एक एक करके, हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसके बाद ही उन लोगों का मैंने नॉर्मल इंटीग्रेशन हमारे देश के साथ होगा। सो काफ़ी मैंने लंबा रास्ता है, ये जो इंटीग्रेशन का जो काम है, इतने लंबा मैंने रास्ता में जाना है, वो काम आज से हम शुरू करेंगे।
ये थे कूचबिहार के डीएमपी उलग नाथन, और कूचबिहार से हमारे साथ बीबीसी संवाददाता शकील अख्तर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं। शकील, ये जो बात कर रहे हैं पी उलग नाथन, लोगों को परिचय पत्र देना, लंबा रास्ता, ये ज़मीन पर कैसे काम करेगा? कितनी आसानी या मुश्किल होगी लोगों को नए परिचय पत्र देना, लोगों को बसाने के एड्रेस देना?
देखिए विनीत, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो काफी पूरी तरह से रजिस्टर्ड हैं, एक एक आदमी के नाम लिखे हुए हैं, सारे लोगों के जो डिटेल्स हैं वो गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। और मैंने कल कई लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये जो इसका प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो चुका है, और सरकारी लोग जो पूरा डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करना पहले ही शुरू कर चुके हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें ग्राउंड पर इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एक पूरा सिस्टम जमीन पर सब कुछ मौजूद है, बस उसका इंटीग्रेशन जो एक प्रोसेस होता है उसमें वो रफ्ता रफ्ता होता रहेगा। और एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि ये बड़ी पॉलिटिसाइज सोसाइटी है, इससे पहले कि वहां पर ये डीएम और सरकारी जो तंत्र है वो काम करना शुरू करे, उससे पहले पॉलिटिकल पार्टियां वहां पहुंचना शुरू हो जाएंगी, बड़ी तेजी से जो है वो अपना कैंपेन शुरू होगा, और हर आदमी ये चाहेगा कि अपना क्रेडिट लेने के लिए एक अच्छा खासा जो है आबादी जब आती है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और ये चूंकि खुद अपने आप पर निर्भर इलाका है तो इतनी मुश्किलें मुझे नहीं लगता कि नजर आएंगी, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज बहुत स्मूथ तरीके से 5-6 महीने के अंदर जो है ये बहुत हद तक काफी काम हो चुके होंगे।
आपने राजनीतिक पार्टियों का जिक्र किया और मेरा अगला सवाल यही था, इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये जो कुछ हो रहा है कूच बिहार में या फिर जो एनक्लेव्स की अदला बदली, इसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा पश्चिम बंगाल में?
देखिए वैसे तो ये पूरा एक बहुत बड़ा मानवीय मसला भी था और अमानवीय स्थिति में लोग रह रहे थे वहां पर, और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। किसी भी सभ्य सोसाइटी में इस तरह की असभ्य जीवन लोगों का गुजारना ये कभी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 70 साल से कुछ इतने लोग इन हालत में रहे। लेकिन रही पॉलिटिकल पार्टीज की बात, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कल भी जो स्पीच वहाँ पर जो लोकल एमएलए वगैरह देने आए तो वो इमिजिएटली उसमें ऐसा लग रहा था कि एक हल्का सा उन्होंने थोड़ा सा राजनीति का कहीं पर हल्का सा रंग दिया, जिस पर जो दूसरी पार्टी के एक एमएलए थे उन्होंने कहा कि राजनीति कहीं पर हम लोग तो करते रहते हैं, थोड़ा बचना चाहिए, तो वो असर तो कहीं ना कहीं पर रहता है। और आबादी जो है 12-13 हजार की आबादी है, वो चूंकि यहाँ पर किसान समाज फैला हुआ है दूर दूर तक, तो ये बड़ा इम्पैक्ट करेगा, कम से कम 2 एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इमीडिएटली इसका इम्पैक्ट होगा, तो यकीनन उसकी पॉलिटिकल अहमियत भी काफी है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगी ये लोग।
जी आखिरी सवाल आपसे शकील, आज क्या क्या होना है अगर आप संक्षेप में बता पाए कुछ महत्वपूर्ण चीजें?
देखिए पहले तो इन्होंने जो प्लान किया हुआ था वो उसके था कि सरकारी तौर पर भी एक बाकायदा वहां पे झंडारोहण होगा, लेकिन ये जो पूर्व राष्ट्रपति कलाम की वजह से उनके ध्यान की थी उसको अभी तक चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे कार्यक्रम सरकारी अभी नहीं होंगे, लेकिन ये लोग अपना डेली का कोई ना कोई प्रोग्राम ये 5 तारीख तक शुरू करेंगे और ये कंटिन्यूस ऑफ सरकारी तौर पर इसमें कोई ना कोई काम होता रहेगा।
कूचबिहार से शकील अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका।
बीबीसी इंडिया बोल।
याकूब मेनन को फांसी पर उठे बवाल से एक बार फिर फांसी की सजा के औचित्य पर बहस ताजा हो गई है। ये सवाल बार बार उठता रहा है कि भारत में मृत्युदंड के प्रावधान को क्यों न खत्म कर दिया जाए। दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने इस प्रावधान को खत्म कर दिया है, लेकिन फांसी के पक्षधरों का कहना है कि दंड का प्रावधान न्याय के लिए जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? इस शनिवार 1 अगस्त को बीबीसी इंडिया बोल का यही है विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी हिंदी सेवा में आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, मेरे यानी विनीत खरे के साथ। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने के बाद बलात्कार की शिकार हुई 14 वर्षीय किशोरी के गर्भपात की प्रक्रिया की कल सुबह अहमदाबाद के अस्पताल में शुरुआत हुई। ये प्रक्रिया करीब 24 से 36 घंटे चलेगी। गर्भपात को दवा के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ अहमदाबाद से अंकुर जैन।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद बलात्कार का शिकार हुई 14 वर्षीय किशोरी के गर्भपात की प्रक्रिया शुक्रवार सुबह को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में शुरू हुई। ये प्रक्रिया करीब 24 से 36 घंटे चलेगी और इसे दवा के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। नाबालिग लड़की तब गर्भवती हो गई थी जब इस साल फरवरी में टाइफाइड का इलाज कराने के दौरान चिकित्सक जतिन मेहता ने उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। गुजरात हाई कोर्ट ने उसे गर्भपात कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता और उसके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्त्री रोग विशेषज्ञ और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक से अपनी राय मांगी, जिसके बाद 5 लोगों की एक मेडिकल टीम ने लड़की की जांच की। सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रभाकर इस पैनल का हिस्सा थे और वे लड़की की गर्भपात प्रक्रिया से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रभाकर ने कहा,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से एक 14 साल की बालिका को हमने रेप विक्टिम है उसको भर्ती किया है और उसका जो पहले तो एग्जामिनेशन करने का था कि जो उसका कंडीशन कैसा है, मेंटल स्टेटस कैसा है। ये केस में उसका मेंटल स्टेटस की उसका डिप्रेशन में सीवियर था और सुसाइडल उसका टेंडेंसी था और अभी जो उसकी उम्र देख के उसका जो सशक्त जो बोलते हैं जो ऑर्गन्स मैच्योर नहीं थे वो सब था, उसकी वजह से हमारी टीम ने सोचा कि मेंटल स्टेटस और सब पूरा देखने के बाद उन्होंने डिसाइडेड किया कि उसने अबॉर्शन कराना चाहिए। वो जो लड़की है हमारी हॉस्पिटल में भर्ती है और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उसकी निगरानी में अभी उसका दवाई से प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने का सोचा और अभी प्रोग्रेस भी अच्छा हो रहा है।
इससे पहले अप्रैल में गुजरात हाई कोर्ट ने एक अन्य रेप केस के मामले में पीड़िता को बच्चा गिराने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि इस मामले से देश भर में मेडिकल टर्मिनेशन गर्भावस्था अधिनियम 1971 के संशोधन की चर्चा शुरू हुई है। इस अधिनियम के अनुसार 20 सप्ताह से अधिक आयु वाले गर्भ को गिराने की बात को मान्य नहीं रखा है। अंकुर जैन, बीबीसी अहमदाबाद।
और अब नई रिलीज हुई फिल्म दृश्यम का रिव्यू।
वेल, आज रिलीज हुई है फिल्म दृश्यम, जिसमें है एक्टर अजय देवगन, उनके साथ हैं तबू और हैं श्रिया सरन। फिल्म एक रीमेक है 2013 में बनी एक मलयालम फिल्म दृश्यम की। इसके डायरेक्टर हैं निशिकांत कामत। तो आइए, स्टूडियो में ही मौजूद हैं नम्रता, उन्हीं से पूछते हैं कैसी लगी उन्हें ये फिल्म।
क्या पता कब कहां से मारेगी जिंदगी।
विदे, दृश्यम ना एक बहुत फेमस मूवी रह चुकी है मलयालम में, जीतू जोसेफ ने बनाई थी। मैंने मलयालम वर्जन भी देखा है, मैंने पापनासम भी देखी है तमिल वर्जन। तो इसमें यह है कि दो तरह के ऑडियंस होंगे, कुछ जो कि देख चुके होंगे और फिर ये फिल्म देख रहे होंगे, मैक्सिमम शायद ऐसे होंगे कि जिन्होंने नहीं देखी होगी दोनों फिल्में और वो देखने जाएंगे। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं दोनों का रिएक्शन और रिस्पॉन्स बहुत अलग अलग होगा।
अरे क्या रे जिंदगी, क्या है तू, तेरी कार्बन कॉपी हूँ मैं, या मेरा आईना तू।
तो अगर जो पहली बार देख रहे हैं इस मूवी,
हाँ,
को, जिनको पापनासम और दृश्यम के बारे में नहीं पता,
हाँ, हाँ,
उनको ये फिल्म कैसी लगेगी?
उनको ये फिल्म मुझे लगता है शायद स्लो लगे, या इस फिल्म को अनरैवल होने में, क्राइम और उसका गेम होने में समय लगता है, क्विक कट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको फिर तमिल और मलयालम वर्जन से कंपेयर करूं तो ये शायद क्विकर है, ये फास्टर है, ये ज्यादा जल्दी से आगे बढ़ती है। पापनासम में तो ये था कि आपका पूरा फर्स्ट हाफ एक कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने में लग गया था और वहां पर कमल हासन एज अ परफॉर्मर बहुत सामने उभर कर आए थे, क्योंकि वो एक ऐसे एक्टर हैं जो कि दर्शकों को बांध के रख सकते हैं।
क्या पता कब कहां से मारेगी जिंदगी।
यहाँ पर अगर आप इसको और कौन सी थ्रिलर हम सोच सकते हैं, अगर हम सोचें जॉनी गद्दार या और भी कोई फिल्म थ्रिलर जो अभी रिसेंटली, उसके हिसाब से आपको बदलापुर ले लें चाहे, उसके हिसाब से ये आपको शायद स्लो लगे, बहुत कन्वेंशनल लगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, ज़्यादा टेक्निकल फ्लरिशेस नहीं है, सीधे सीधे कहानी कही जा रही है, दिमाग का खेल, लिखाई का खेल ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि आप कैसे एडिट कर रहे हैं या कैसे शूट कर रहे हैं, तो उसके बनिस्बत लोगों को शायद स्लो लगे।
ओके, और आप फिर इसे कितने पंच मारेंगी या कुछ टास देंगी?
मैं इसको 5 में से 2.5 नंबर दे दूंगी।
फिल्म विश्लेषक नम्रता जोशी के साथ थे विदित मेहरा और अब जानते हैं आज के अखबार क्या कह रहे हैं। दिलनवाज पाशा स्टूडियो में है।
जी, आज के अखबारों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में, जो उन्होंने कहा है कि यूपीए ने हिंदू आतंकवाद शब्द दिया था, और इसी पर नवभारत टाइम्स ने लिखा है राजनाथ ने हिंदू टेरर पर कांग्रेस को घेरा। एक और खबर जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है वो है बांग्लादेश और भारत के बीच एनक्लेवों का तबादला, और इसी पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का शीर्षक है 68 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस अनदर फ्रीडम एट मिडनाइट, यानी आज़ादी के 68 साल बाद मध्यरात्रि में एक और आज़ादी। जिक्र करूंगा इंडियन एक्सप्रेस की पहले पन्ने पर प्रकाशित एक खबर का जिसके मुताबिक जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, जिन्होंने मुंबई धमाकों की सुनवाई की थी, उनका कहना है कि याकूब की फांसी के मामले में तो न्याय हुआ है लेकिन यही उत्साह 1993 के दंगा मामलों में भी दिखाया जाना चाहिए था। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने उज्ज्वल निकम जो सरकारी वकील हैं उनका इंटरव्यू प्रकाशित किया, और एक सवाल के जवाब में उज्ज्वल निकम ने कहा है जो याकूब को मुस्लिम कह रहे हैं वो आतंक का धर्म तय कर रहे हैं। और इसी अखबार में एक और खबर है जिसके मुताबिक गुजरात और बाढ़ में बारिश से अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। अमर उजाला के पहले पन्ने पर प्रकाशित एक खबर के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय में फर्जी दाखिले का जो रैकेट का जिसका पर्दाफाश हुआ है उसके सरगना एक कांग्रेसी नेता हैं। दैनिक जागरण ने एक विशेष खबर प्रकाशित की है पहले पन्ने पर जिसमें एक महिला को पुलिस के फटकारने की खबर है। महिला ने जब पुलिस से गुहार लगाई कि उसका पति खुदकुशी करने वाला है तो पुलिस वालों ने जवाब दिया जब मर जाए उसके बाद ही हमारे पास आना, और इसमें आरोपी पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। भारत के 4 शिक्षक लीबिया में इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण वाले इलाके में इस्लामिक स्टेट के कब्ज़े में बताए जा रहे हैं, और ये खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हालांकि 2 शिक्षकों को कल रिहा कर दिया गया था। दैनिक जागरण लिखता है लीबिया में 4 भारतीय अगवा, 2 छुड़ाए गए। और इसी अखबार के पहले पन्ने पर एक प्रकाशित खबर के मुताबिक पेपर सेट करने वालों पर FIR होगी। ये दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में आयोजित PGT हिंदी परीक्षा में जो प्रश्न पत्र थे उनमें धांधली का मामला है। दिल्ली सरकार शिक्षकों ने पेपर तय किया था उन्हीं पर ही FIR करने जा रही है।
और एक खबर जो दिलनवाज आप अखबार पढ़ रहे थे नई दुनिया मेरे हाथ लगा है वो ये कि जम्मू कश्मीर के कांग्रेस विधायक उस्मान मजीद ने दावा किया है कि वो कई बार 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी टाइगर मेमन से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई बार मिल चुके हैं। ये खबर है नई दुनिया में। बहुत शुक्रिया आपका। और अब साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। पहले तो अपने तेज गेंदबाजों और उसके बाद बल्लेबाजों के शानदार खेल के दम पर मेजबान इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे ही दिन कल ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से करारी मात दी। बर्मिंघम में खेले गए इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के सामने दूसरी पारी में जीत के लिए केवल 121 रनों का लक्ष्य था जो उसने इयान बेल के नाबाद 65 और जो रूट के नाबाद 38 रनों की मदद से केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 265 रन पर समाप्त हुई लेकिन इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 145 रनों की बढ़त मिली थी जो निर्णायक साबित हुई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टीवन फिन ने दूसरी पारी में 79 रन देकर 6 विकेट लिए जबकि पहली पारी में जेम्स एंडरसन ने 47 रन देकर 6 विकेट लिए थे। इस टेस्ट मैच को लेकर भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया कहते हैं,
शानदार क्रिकेट। ये रिजल्ट महत्वपूर्ण इसलिए है, एक तो आप श्रृंखला में 2-1 से आगे निकल गए हैं, उससे भी महत्वपूर्ण इसलिए किस तरीके की वापसी उन्होंने करी है। ऑस्ट्रेलिया इस तरीके की वापसी करे इसके लिए वो जानी जाती है। एक नया दौर है इंग्लैंड के लिए जिसकी शुरुआत है यहां से, और मुझे लगता है कि ये जो सोच है या जो मानसिकता है ये बदली है न्यूजीलैंड के साथ वनडे खेलने के बाद, जिस जज्बे के साथ खेले थे। अगर एशेज की बात करें, पहला टेस्ट मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया ने अगला टेस्ट मैच में ऐसी पटकनी दी कि लगा कि पहला टेस्ट मैच शायद ऐसे ही फ्लूक से जीते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पटकनी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दी है, ऑस्ट्रेलिया के खेमे में दबाव डाल दिया उन्होंने कई प्लेयरों के ऊपर, और जो सबसे बड़ा दबाव उन्होंने डाला है वो उनके कप्तान के ऊपर डाल दिया है।
उधर चेन्नई में भारत ए के लिए बांग्लादेश दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 4 दिवसीय अनधिकृत टेस्ट मैच में खेलने उतरे विराट कोहली ने दूसरी पारी में 45 रन बनाए तो सलामी बल्लेबाज अभिनव मुकुंद के बल्ले से भी 59 रन निकले। कप्तान चेतेश्वर पुजारा केवल 11 रन बनाकर रन आउट हुए तो श्रेयस अय्यर ने 48 और विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने 30 रन बनाए। इन उपयोगी पारियों की बदौलत भारत ए ने खेल के तीसरे दिन स्टंप के 6 विकेट खोकर 265 रन बनाए। इसके बावजूद उसकी बढ़त केवल 51 रन है और उसके 4 विकेट बाकी हैं। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ए को 214 रनों की विशाल बढ़त मिली थी। वहीं मीरपुर में मेजबान बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन बारिश की भेंट चढ़ गया। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन 8 विकेट खोकर 246 रन बनाए थे। कप्तान मुशफिकुर रहीम ने सर्वाधिक 65 रन बनाए जबकि दक्षिण अफ्रीका के जेपी ड्यूमिनी ने 27 रन देकर 3 विकेट लिए थे। और अब बात तीरंदाजी की। डेनमार्क में जारी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के रजत चौहान कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने कनाडा के टैटरीन केविन को 143-138 से हराया। अब फाइनल में उनका सामना मेजबान डेनमार्क के हेंसन स्टीफन से होगा। जबकि महिला रिकर्व वर्ग में भारत की लक्ष्मी रानी मांझी कांस्य पदक के लिए कोरिया की चोई मिसुन का सामना करेंगी। और अब बात बैडमिंटन की। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में वैसे तो अभी काफी समय है और इसके लिए भारतीय खिलाड़ी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। पुरुष एकल वर्ग में भारत के पी कश्यप को 10वीं वरीयता दी गई है जबकि के श्रीकांत को 3री। महिला एकल वर्ग में भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल को 2री वरीयता दी गई है तो विश्व चैंपियनशिप में 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी पीवी सिंधु को 11वीं वरीयता दी गई है। महिला युगल वर्ग में पिछले दिनों कनाडा ओपन जीतने वाली ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी को 13वीं वरीयता दी गई है। भारत के ऑफ स्पिनर आर अश्विन को कल खेल मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने अर्जुन पुरस्कार सौंप दिया जिसके लिए उन्हें पिछले साल चुना गया था। बीजिंग ने अल्माटी को इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की वोटिंग में बेहद नजदीकी रूप से 44-40 से हराकर साल 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल कर ली। वहीं लुसाने को साल 2020 में होने वाले यूथ ओलंपिक विंटर गेम्स की मेजबानी सौंपी गई है। टेनिस के कोर्ट पर स्पेन के राफेल नडाल चिली के क्रिश्चियन क्यूवास को 6-3 6-2 से हराकर हैम्बर्ग ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
ये थे आदेश कुमार गुप्त और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
मध्यरात्रि 12 बजते ही भारत और बांग्लादेश के बीच सीमांत गांव की अदलबदली प्रभाव में आ गई और बीते 7 दशकों से राष्ट्रविहीनता का दंश झेल रहे करीब 50,000 लोगों को आधिकारिक रूप से भारत और बांग्लादेश की राष्ट्रीयता मिल गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि पश्चिमी तट पर आगजनी के हमले में 1.5 साल के फलस्तीनी बच्चे की जान लेने वाले हमलावरों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अफगान तालिबान के नेता मुल्ला उमर की मौत की पुष्टि के एक दिन बाद एक और वरिष्ठ इस्लामी नेता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। खतरनाक इबोला वायरस की रोकथाम के लिए बेहद कम समय में विकसित किया गया टीका परीक्षणों में 100% कामयाब पाया गया है और ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि उनकी सरकार चैनल टनल से ब्रिटेन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे अप्रवासियों को रोकने के लिए खोजी कुत्ते भेजेगी। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी 1 घंटे बाद विश्व भारती में।